نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. امید ہے آپ کا پہلا روزہ بہت اچھا گزرا ہوگا اور آپ نے پریکٹس کی ہوگی کچھ تھوڑا خاموش رہنے کی. ابھی شروعات ہے تو لمبی چوڑی باتیں کرنے کے بعد یاد آئے گا کہ مجھے خاموش رہنا تھا, مگر کوئی تو موقع دن میں ہوگا کہ بر وقت یاد آ جائے کہ آج ہم نے یہ بات سیکھی تھی. اگر یہی پریکٹس انشاءاللہ تعالی ہم پورا رمضان کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ بولتے کم ہیں تو سنتے زیادہ ہیں, تو کتنی ساری نفع مند چیزیں ہیں جو انسان صرف بہت زیادہ بولنے کی وجہ سے مس کر دیتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آج جو بات چیت ہے وہ صرف آمنے سامنے نہیں ہوتی بلکہ فون پر زیادہ ہوتی ہے, اور ٹیکسٹ کے تھرو تو اس سے بھی زیادہ. تو کئی طریقے ہیں جن کو ہم نے چیک کرنا ہے. جانتے ہیں کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی؟ زبان. تو اچھی طرح جان لیں کہ ہم میں سے جس کی باتیں جتنی زیادہ ہوں گی اس کی غلطیاں بھی اتنی زیادہ ہوں گی اور گناہ بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے. تو ہم آج ہی سنبھل جائیں. سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, عالمت نفس ما احضرت, وہ دن ہوگا جب ہر نفس کو پتہ چل جائے گا وہ کیا لے کر آیا. تو یہ بھی ایک آفت ہے کہ انسان بولے اور اس کو یہی نہ پتا ہو کہ اس نے کیا کیا بولا ہے. تو بولنے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ سوچنا ہے کہ کیا اس میں جو میں بولنے لگی ہوں خیر ہے اور یہ ضروری بات ہے تو پھر بولوں. اندازہ کریں کہ امام احمد بن حنبل ایک دفعہ سخت بخار میں مبتلا تھے اور تکلیف سے کرا رہے تھے, بار بار ان کی زبان سے ہائے ہائے نکلتا تھا. تو ایک بزرگ ان کو وزٹ کرنے آئے تو فرمایا, اے احمد ہائے ہائے کیوں کرتے ہو, اس کی جگہ اللہ اللہ کہو. ہائے ہائے کا تو حساب دینا ہوگا, اور اللہ اللہ کہو گے تو اجر و ثواب ملے گا. کتنے زیادہ کانشس تھے وہ لوگ کہ ہماری زبانوں سے کیا نکلتا ہے. اور ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رسول سے دین سے محبت ہے, مگر جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر تو زبان پر سب سے زیادہ جاری رہتا ہے. تو کتنی باتیں ہیں جو ہم اللہ رسول کی اور دین کی کرتے ہیں, اور کتنی ہیں جو ہم لوگوں کی کرتے ہیں یا اپنی کرتے ہیں, پھر محبت کس سے زیادہ ہوئی؟ تو جہاں دین کی بات ہوگی, خیر کی بات ہوگی, نیکی کی بات ہوگی, وہاں ضرور کریں گے, وہاں خاموش نہیں رہنا. لیکن جہاں پر اپنی باتیں یا لوگوں کی ہوں گی وہاں پہ خاموش رہنا. تو انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے ہم یہ پریکٹس کرتے رہیں گے ہمارے پاس وقت زیادہ ہوگا, اور غور و فکر کا بھی موقع زیادہ ملے گا, اپنے محاسبے کا موقع زیادہ ملے گا, اپنے اندر سے جو ہم نے برائیاں نکالنے کا سوچا ہے انشاءاللہ تعالی وہ برائیاں ڈھونڈنے کا موقع ملے گا. آج جس برائی کو ہم اپنے اندر سے نکالنے کے لیے اپنا محاسبہ کریں گے وہ ہے جھوٹ. کہنے کو ہم سب کہتے ہیں ہم تو جھوٹ نہیں بولتے, مگر ہم سب کبھی نہ کبھی ضرور اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. کبھی مجبوری کا بہانہ کر کے, کبھی مذاق میں, کبھی ضرورت پڑنے پر جھوٹ کا سہارا لے ہی لیتے ہیں, اور بعد میں کہتے ہیں کیا کرتی, پھر مجھے جھوٹ بولنا ہی پڑا. اور بہانے بنانے کو تو ہم کبھی جھوٹ سمجھتے ہی نہیں. اور یہ بھی ایک بہت بڑی آفت ہے جو ہمیں لے ڈوب سکتی ہے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے, شرک اور والدین کی نافرمانی کے بعد جو بڑا گناہ آتا ہے وہ جھوٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی سے معاملے میں پھنس جائیں, جب ہمیں کچھ سمجھ نہ آئے یا جب مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے تو تب جھوٹ بولنا جائز ہے. ویسے تو نہیں میں بولتی لیکن تب بول لیتی. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے, وہ کسی بھی شکل میں ہو. جب جھوٹ بولنے سے جان چھوٹ رہی ہو تب ہم بول لیتے ہیں. ना, अब बैठे बिठाए तो शायद ही, आदतन तो शायद ही कोई झूठ बोलता हो, लेकिन आप देखते हैं कि जब कोई मुश्किल आती है, कोई मसला आता है, तो हम फौरन झट से झूठ बोल देते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जिस दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर पैगंबर इस कदर खौफजदा होंगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 झूठ बोले थे, और मैं अल्लाह की अदालत में सिफारिश नहीं कर सकता, हालांकि उन्होंने तो तौरिया किया था। तो उस दिन हमें अपने ये सारे झूठ कितने याद आएंगे जो हम बगैर सोचे समझे बोले चले जाते हैं, और कभी भी इनके ऊपर तौबा करने की तौफीक भी नहीं हुई, इसलिए कि कभी ये कोई बिग डील लगते ही नहीं। और जब इन तमाम झूठों पर कभी माफ़ी मांगी ही नहीं, बल्कि माफ़ी मांगना तो दूर की बात, हमने कभी माना ही नहीं कि ये कुछ गलत हमने किया है, तो माफ़ी का सवाल कहाँ से आएगा? ये तो झूठ हमारे साथ चिमट गए हैं। तो आज याद करना है कि कितने सारे झूठ बोल चुकी हूँ और आइंदा नहीं बोलना। और बाज़ दफ़ा तो खामखाई नादानिस्ता तौर पर हमने झूठ बोले होते हैं जिनका हमें कभी शुमार ही नहीं होता। मसलन हम कहते हैं आज सुबह से तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, हालांकि सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहे। आज तो मैंने बहुत काम किया, हालांकि कोई ख़ास काम नहीं किया होता। मेरे सर में बहुत दर्द है, हालांकि मकसद सिर्फ दूसरे से जान छुड़ाना होता है। ट्रैफिक रास्ते में बहुत मिला इसलिए लेट हो गई, हालांकि खुद देर से निकले थे। असल में मेरे हस्बैंड नहीं मानते, हालांकि दरअसल खुद का इरादा नहीं होता। मेरी तो उम्र अभी इतनी ही है, हालांकि उससे बहुत बड़ी होती है। डॉक्टर के पास जाके मसले को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ताकि वो तवज्जो ज़्यादा दें। दुकानदार के पास जाके ये कहते हैं ये चीज़ तो मैंने यूज़ की ही नहीं, ताकि वो रिटर्न कर ले। सौदा करते वक्त कहते हैं इतने का ही हमेशा लेती हूँ। दर्जी से जाके कहते हैं कि मेरी फ़्लाइट तो कल ही है, तो आज ही जल्दी से सी दो। आप सोचें ये तमाम काम जो हैं ये तो निपट ही जाएंगे, मगर कभी सोचा कि ये वो झूठ है जो जमा होते जाएंगे और क़यामत के दिन का जवाब देना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा बच्चे को बुला रही है कि आओ मैं तुम्हें कोई चीज़ दूँ। आपने पूछा क्या तुमने वाकई इसको कुछ देना है? वो बोली हाँ। आपने फरमाया अगर ना देना होता और यूं ही बुला रही होती तो ये झूठ लिखा जाता। और हम तो अपने बच्चों से भी झूठ बोल देते हैं, शौहर से झूठ बोल देते हैं। तो ये सोचें कि ये गुनाह कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत में हमें बहुत महंगा पड़ जाए जिसको हमने कुछ भी नहीं समझा। क्या हम में से कोई ऐसा है जो ये कह सकता हो कि क़यामत के दिन मैं कम से कम झूठ से भरी जिमाऊंगी, मैं ये कह सकूंगी मैंने कभी झूठ नहीं बोला? या हम में से कोई ऐसा है जो ये कह सके, या एटलीस्ट चलो यही कह सकें कि रमज़ान 1440-2019 के बाद मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कुछ तो तसल्ली होगी। तो सच्चे दिल से तौबा करनी है और छोड़ना इस गुनाह को। लेकिन अगर रवैया ये है कि मैं तो नहीं ये कर सकती, इसलिए कि कहीं ना कहीं तो झूठ बोलना ही पड़ता है, तो फिर सोच लें कि ये तो गुनाह हमारे साथ ही रहेगा। हमने कभी सोचा ये कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह की नज़र में मैं झूठी लिखी गई हूँ? क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता रहता है तो अल्लाह की नज़र में झूठा लिखा जाता है। अल्लाह के हाँ मैं क्या नाम लिखवा रही हूँ अपना? मुझे खुद तो झूठे लोग पसंद नहीं हैं, कभी नहीं चाहती कि लोग मेरे साथ झूठ बोलें, लेकिन ये चाहती हूँ कि मुझे एक्सेप्ट कर लिया जाए जबकि मैं झूठ बोलती रही हूँ। हम इस महीने में अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो क्यों ना इस गुनाह से तौबा कर लें, क्यों ना इस गुनाह से पलट आए और ये एक चेंज लेकर आए अपनी ज़िंदगी में कि अब के बाद नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे तो मैं बोल दूँगी, यहाँ पे तो ये वक्त, ये मौका, ये जिस भी मसले में मैं फंसी हुई, ये गुजर जाएगा, मगर इसका जो गुनाह बाकी रहेगा, वो जो मेरे आमाल नामे में लिखा जाएगा, जिसका हिसाब मुझे वहां जाके देना पड़ेगा, जिस दिन कलेजा मुंह को आ रहा होगा, दिल उड़ा जा रहा होगा और पसीने से सारा जिस्म भीगा होगा, घबराहट का वो आलम होगा कि कोई किसी को ना पूछेगा, वहां मुझे इन तमाम झूठों का जवाब देना पड़ेगा जो मैं भुला चुकी हूं, मुझे याद भी नहीं। तो इंशाल्लाह ताला इससे तौबा करनी है, पिछले जो गुजर चुके उनके ऊपर तौबा, और आइंदा के लिए इससे अल्लाह की पनाह में आना है, अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। एक मसनून दुआ भी है, अल्लाहुम्मा तहिर कल्बी मिनन निफाक, अल्लाह मेरे दिल को निफाक से पाक कर दे, वअमली मिनर रिया, और मेरे अमल को रियाकारी से पाक कर दे, वलिसानी मिनल कदिब, और मेरी जुबान को झूठ से पाक कर दे अल्लाह। फइन्नका तअलमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फि सुदूर, बेशक तू तो जानता है आंखों तक की खयानत को और जो कुछ दिलों में छुपा हुआ है उसको भी। थोड़ी सी लंबी दुआ है लेकिन इस कदर मुफीद दुआ है, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमें चाहिए। हमें निफाक से भी पनाह चाहिए, हमें अमल में रियाकारी से भी पनाह चाहिए, हमें झूठ से भी निजात चाहिए, और ये सिर्फ अल्लाह की मदद से हो सकता है। तो अल्लाह पाक कर दे मुझे इन चीज़ों से, ये जो ले डूबने वाली हैं। तो दुआ ये है आज की, और जिक्र क्या है, वो जिक्र है कि अगर आप इसकी एक तस्बीह कर लें पूरे दिन में, एक तस्बीह मुश्किल नहीं है, 100 मरतबा कहना, तो इंशाल्लाह ताला जितने गुनाह हैं, चाहे वो समुंदर की झाग के बराबर भी, तो माफ़ हो जाएंगे। और तस्बीह बहुत आसान है, बहुत छोटी सी, लंबी नहीं है, और तस्बीह है सुबहानल्लाही व बिहम्दिही, सिर्फ सुबहानल्लाही व बिहम्दिही, मेरे साथ बोलिए सुबहानल्लाही व बिहम्दिही, सुबहानल्लाही व बिहम्दिही, सुबहानल्लाही व बिहम्दिही। कितनी मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना। इसी तरह आजकल हम नेकियों की तलाश में हैं, हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन दिनों में नेकियां कमा लें। अब बहुत ही छोटा सा आपको एक नुस्खा बताती हूँ जिससे आप चलते फिरते 30-30 नेकियां कमा सकते हैं। कमाई का महीना है ना, लेकिन जब लोगों के कमाई का सीज़न होता है, रुपए पैसे की कमाई का सीज़न होता है, तो लोग अपनी जान लगा देते हैं, रात रात तक जागते हैं, और इवन अपनी दुकानों के टाइमिंग्स भी बढ़ा देते हैं। तो क्या हम इन दिनों को कीमती जानते हुए अपनी जान न खपाएंगे? और जो मैं आपको नुस्खा बताने लगी, ये तो बहुत ही आसान है। देखें, ये ना हो कि क़यामत के दिन हम देखें कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने यही छोटी छोटी नेकियां करके इतने पहाड़ बना लिए, तो उस दिन हमें समझ आए कि ओहो, ये तो मैं भी कर सकती थी, मैंने क्यों छोड़ दिया। और छोड़ने की वजह ये नहीं होती कि कोई मुश्किल काम है, छोड़ने की वजह सिर्फ ये होती है कि हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी, कभी सीरियस ही नहीं लिया, बस गफलत में रहे। तो इंशाल्लाह ताला हमारा एम है कि इस रमज़ान में हम छोटी छोटी नेकियों के पहाड़ बना लेंगे, इंशाल्लाह। देखिए जैसे छोटे छोटे गुनाह जमा होके पहाड़ बन जाते ना, इसी तरह छोटी छोटी नेकियों के जमा होने से भी पहाड़ बन जाएंगे, और ये भी मीजान में तुलेंगी, जहां पे मिसकाला जर्रातिन भी तुलेगा, मैया अमल मिसकाला जर्रातिन खैर यरा, अगर शर का जर्रा तुलेगा तो खैर का भी तो तुलेगा। तो छोटी छोटी नेकियों को हाथ से जाने ना दें, इनमें कोई पैसे नहीं लगते, इनमें कोई ताकत नहीं रखती, इनमें कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत हैंडी हैं, बहुत आसानी से मुयस्सर है, मगर थोड़ी सी हमारी तवज्जो की जरूरत है। तो आज जो नेकी जिसको हमने रिवाज देना है वो है सलाम करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दो मुसलमान मिले तो एक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू और दूसरा जवाब में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहे, तो हर एक को 30-30 नेकियां मिलती हैं। और मुसाफहा करें, जब आप हैंडशेक करेंगे तो दोनों के गुनाह माफ कर दिए जाते, सगीरा गुनाह दोनों के माफ हो जाते। अब ये हम दूसरों से मिलें ये तो कम ही शायद हो, पूरे दिन में शायद मुलाकात ना हो आपकी किसी से, लेकिन हम ये क्यों समझते हैं कि जब हम बाहर जाके किसी से मिलेंगे तभी हमें सलाम करना है? देखिए घर में हमारे जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनको क्यों नहीं सलाम करते? अपने बच्चों को सलाम करें, अपने घर वालों को, बाकियों को सलाम करें। और सलाम के लिए ज़रूरी नहीं कोई बाहर से ही आए तो सलाम करेंगे, आपकी नज़रों से कोई ओझल है उसके बाद वो आपके सामने आता है तो तब भी आप सलाम करें। तो सुभानअल्लाह, आप कितनी सारी नेकियां दिन में कमा सकते हैं, या कभी इनकी तरफ तवज्जो दी? हम सोचते हैं ना, कुरान भी हम इतना शौक से पढ़ते हैं इसलिए ताकि हर हर्फ पे मुझे 10 नेकियां मिल जाए, तो देखें यहाँ पे 30-30 नेकियां मिल रही हैं, उसको भी 30 मिली, जवाब देने वाले को भी 30 मिली। तो पूरा अगर बोलेंगे तो एक तो दुआ भी आप दे रहे हैं दूसरे को, दूसरे अपनी नेकियों में इजाफा ही कर रहे हैं, सारा दिन नेकियां बढ़ती जा रही, और आप देखेंगे इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा आपके बच्चों पे भी, वो भी सलाम किया करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि सलाम ना करना बुखल की अलामत है, यानी ये इतनी बड़ी कंजूसी है कि इंसान ये छोटा सा अमल कर ले उससे उसको नेकी मिल सकती है लेकिन वो फिर भी नहीं करता। तो इंशाअल्लाह ताला इसको रिवाज देंगे, इसको अपने घरों में बढ़ाएंगे ताकि इससे हमें नेकियां भी मिलें और दुआएं भी देने वाले बन जाए हम। अल्लाह ताला हम सब से कबूल फरमाए, हमारे जज्बात को कबूल फरमाए, हमारे शौक को अल्लाह ताला देखकर कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला हमसे बुराइयां दूर फरमा दे और नेकियों में हमें दौड़ने वाला बना दे, नेकियों को करना हमारे लिए आसान फरमा दे। अल्लाह ताला हमें भूल जाता है, या अल्लाह तू हमें याद करा दिया कर, या अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचना भूल जाता है, अल्लाह ताला तू हमें याद करा दे। या अल्लाह हमारी ज़ुबानों को पाक कर दे झूठ से, कि इन ज़ुबानों से कभी झूठ की बात ना निकले, जिनके नबी सादिक और अमीन कहलाते थे, नबूवत मिलने से पहले भी हमेशा सच बोला था, उस उम्मत को तो सच्चा ही होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी कमियां जो रह गई हैं, जो पिछले गुनाह हैं, जो हमने झूठ बोले, अल्लाह उनके ऊपर हमें माफ़ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें बचा ले। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।